بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواع سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير۔ صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان لانے والو، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا مانس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। आज शनिवार है, जून की 25, जीकादा की 25 और तीर माह की 4 तारीख। दोस्तों, कार्यक्रम की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। पहले हम विश्व समाचार पेश करेंगे, विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे, उसके बाद साप्ताहिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा उज्ज्वल भविष्य। सभा के अंत में हम आपको अन्य साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे, ईरान भ्रमण। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने विचारों को हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने ईरान द्वारा भूकंप पीड़ितों की सहायता करने पर आभार जताया है। चीन ने मांग की है कि अमेरिका को अफगानिस्तान की जनता का पैसा वापस कर देना चाहिए। राष्ट्रसंघ ने इस बात की पुष्टि की है कि फिलिस्तीनी पत्रकार की हत्या इसराइली सैनिकों ने की थी। भारत के महाराष्ट्र राज्य में राजनीतिक उठापटक जारी है। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। ईरान के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के अपने समकक्ष के साथ टेलीफोन पर वार्ता की है। इस अवसर पर अमीर अब्दुल्लाहियान ने अफगानिस्तान में भूकंप और बड़े पैमाने पर तबाही तथा लोगों के मारे जाने पर खेद व्यक्त किया। ईरान के विदेश मंत्री ने इसी के साथ हीरमंद जल पर ईरान के हक पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान प्रशासन को इस मामले को हल करने के लिए गंभीरता का प्रदर्शन करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबान प्रशासन को चाहिए कि दोनों देशों के बीच हीरमंद के पानी के मामले पर होने वाले समझौते पर अमल करके दोनों देशों की जनता की मित्रता और परस्पर सहयोग को विस्तृत करने का वे काम करें। इस टेलीफोन वार्ता में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने अफगानिस्तान में आने वाले भूकंप पर ईरानी जनता और सरकार की ओर से खेद व सांत्वना तथा पीड़ितों और प्रभावितों के लिए मानवीय सहायता पर शुक्रिया अदा किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के स्थायी प्रतिनिधि ने अमरीका में रोके गए अफगानिस्तान के पैसे के वापस किए जाने की मांग की है। अफगानिस्तान में अभी हाल ही में भीषण भूकंप आया जिससे व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ था। وہاں پر حالات بہت خراب ہیں. دکشن پوروی افغانستان میں آنے والے بھوکمپ میں بڑی سنکھیا میں لوگ مارے گئے ہیں. اس بھوکمپ سے گھائل ہونے والوں کی سنکھیا بھی کافی بتائی جا رہی ہے. اسی بیچ راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد کی بیٹھک میں چین کے پرتنیدھی جونگ جون نے افغانستان میں جاری مانوی سنکٹ کی اور سنکیت کیا. انہوں نے کہا کہ ان حالات میں افغانستان کو پہلے سے ادھک سہایتا کی ضرورت ہے. چین کے پرتنیدھی نے کہا کہ ان پرستھتیوں میں امریکہ کو افغانستان کی اس سمپتی کو تتکال سوتنتر کرنا چاہیے جس کو اس نے روک رکھا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ سمے افغانستان کی جنتا کی سہایتا کرنے کا ہے, اس کے پیسے روکنے کا نہیں ہے. الیکھنی ہے کہ بدھوار کو افغانستان میں پچھلے دو دشکوں کا سب سے بھیشن بھوکمپ آیا جس میں 1500 لوگ مارے گئے, 3000 مکان دھوست ہو گئے اور 2000 لوگ اس میں گھائل ہوئے. 6.1 کی تیورتا والے اس بھوکمپ کے کارن 10000 سے ادھک گھر آنشک روپ سے شتیگرست ہو گئے. اس تیور بھوکمپ کے کارن مکانوں کے ملبے میں دب کر بھی بہت سے لوگ مارے گئے. روس کا کہنا ہے کہ آتنکوادی افغانستان سے پڑوسی دیشوں میں پربھاؤ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. روسی رکشا منتری نے کہا کہ انتراشٹری آتنکوادی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے پڑوسی دیشوں میں وہ اپنے اڈے بنائیں جن کے لیے وہ اس دیش کا پریوگ کریں. سرگئی شائگو نے کیندری ایشیا کے دیشوں کے اپنے سمکشوں کے ساتھ بیٹھک کے دوران یہ بتایا کہ انتراشٹری آتنکوادی اپنی ہنسک کاروائیوں کے لیے افغانستان کے راستے اس کے پڑوسی دیشوں میں پیٹ بنانے کے پریاس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سمے شیتر میں دھارمک ریڈیکل وچار دھارا کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی ساتھ مادک پدارتھوں کی تسکری اور اپرادھ تیزی سے پھیل رہے ہیں. روسی رکشا منتری کے انوسار ان حالات میں ہم کو سنیکت روپ سے ان برائیوں کا سامنا کرنا چاہیے. اس سے پہلے روس کے رکشا منتری اس بارے میں سچیت کر چکے ہیں کہ افغانستان میں استھرتا وہاں سے انیہ دیشوں کے لیے مادک پدارتھوں کے نریات میں وردھی کا کارن بنے گی جس سے دیشوں کی راشٹری سرکشا کے لیے خطرے پیدا ہو سکتے ہیں. سعودی عرب کی جیلوں میں راجنیتک بندی بہت ہی دینی استھتی میں جیون گزار رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ سماچار پتر نے اپنی رپورٹ میں سعودی جیلوں میں بند راجنیتک بندیوں کی استھتی کو بہت ہی چنتا جنک بتایا ہے. انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ کے انوسار گرانٹ لیبرٹی دوارا کرائے گئے ادھیان سے پتا چلتا ہے کہ سعودی عرب کے ورتمان یوراج محمد بن سلمان کو جب سے کراؤن پرنس بنایا گیا ہے تب سے وہاں پر سرکار کے آلوچکوں کا برا حال ہے. اس رپورٹ کے انوسار محمد بن سلمان کے زمانے میں 311 لوگوں کو کیول ابھیویکتی کی سوتنترتا کے کارن گرفتار کر کے جیلوں میں ٹھونس دیا گیا. اس دوران ان کو طرح طرح کی یاتنائیں بھی دی گئیں. انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیل میں بند 53 راجنیتک بندیوں کو بہت ہی بری طرح سے یاتنائیں دی گئیں. مانواधिकारों کے معاملے میں سعودی عرب کی چھوی ہمیشہ سے ہی خراب رہی ہے, کنتو محمد بن سلمان کے یوراج بننے کے بعد یہ ادھک خراب ہوئی ہے. پچھلے کچھ ورشوں کے دوران سعودی عرب میں کئی لوگوں کو پھانسیوں, بندیوں کو یاتنائیں دینے, منمانی حراست میں رکھنے, اپہرن, سماجک کارے کرتاؤں کی نظر بندی اور وہاں پر رہنے والے الپ سنکھکوں کی وید مانگوں کا ورودھ کرنے پر آدھارت کئی رپورٹیں لیک ہوئی ہیں. مانواधिकार سنگٹھنوں کا ماننا ہے کہ اس پرکار کی ساری مانواधिकार ویرودھی کاروائیوں کی ذمہ داری سعودی عرب کی سرکار پر ہی آتی ہے. سنیکت راشٹر سنگھ نے یہ بات سویکار کر لی ہے کہ الجزیریہ شما کیجیے گا سنیکت راشٹر سنگھ نے یہ بات سویکار کر لی ہے کہ الجزیرہ کی فلسطینی مہیلا پترکار کی ہتیا اسرائیلی سینکوں نے ہی کی تھی. سنیکت راشٹر سنگھ کی جانچ رپورٹ میں یہ بات اب صاف ہو گئی ہے کہ الجزیرہ ٹی وی چینل کی فلسطینی مول کی مہیلا پترکار ابو عاقلہ کی ہتیا اسرائیلی سینکوں نے کی تھی. اے ایف پی کی رپورٹ کے انوسار رپورٹنگ کے سمے فلسطینی مول کی پترکار ابو عاقلہ نے پترکاروں والی جیکٹ پہن رکھی تھی جس پر پریس شبد لکھا ہوا تھا. राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता ने जनेवा में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हम इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि इसराइली सैनिकों की ओर से चलाई जाने वाली गोली से ही अल जजीरा टीवी चैनल की फिलिस्तीनी मूल की महिला पत्रकार की मौत हुई। उन्होंने कहा कि ये बड़े खेद की बात है कि इसराइली अधिकारियों ने पत्रकार की हत्या के मामले की जांच नहीं होने दी। राष्ट्रसंघ की इस अधिकारी ने यह भी बताया कि आरंभ में इसराइली अधिकारी ये दावा कर रहे थे कि शीरीन अबू आकेला की मौत सशस्त्र फिलिस्तीनियों की फायरिंग से हुई है, जबकि हुआ इसके बिल्कुल ही विपरीत। उनका कहना था कि अभी तक हमें इस बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला है जो ये बताता हो कि जिस जगह से शीरीन अबू आकेला रिपोर्टिंग कर रही थी वहां पर सशस्त्र फिलिस्तीनी मौजूद थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार कार्यालय ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो इस हत्या की घटना की जांच करवाए। याद रहे कि 11 मई को जनीन नगर में रिपोर्टिंग के दौरान गोली लगने से अल जजीरा टीवी चैनल की फिलिस्तीनी मूल की महिला पत्रकार अबू आकेला की मौत हो गई थी। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। इसराइली सैनिकों ने वेस्ट बैंक के क्षेत्र के नाबलस पर हमला करके 82 फिलिस्तीनियों को घायल कर दिया। फिलिस्तीन अलयोम की रिपोर्ट के अनुसार ज़ायोनी सैनिकों ने वेस्ट बैंक के शहर नाबलस के ग्रामीण क्षेत्रों बोरीन, करयूत और बैते दजन में जुमे की नमाज के बाद होने वाले प्रदर्शनों पर हमला कर दिया, जिसमें 82 फिलिस्तीनी घायल हो गए। दूसरी ओर कल इसराइली सैनिकों की ओर से सारी रुकावटों के बावजूद मस्जिदुल अक्सा में 50,000 फिलिस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। फिलिस्तीनियों ने ऐलान किया है कि जारी वर्ष 2022 के आरंभ से अब तक वेस्ट बैंक में इसराइली सैनिक 1200 से अधिक फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनमें से 350 पर अवैध अधिकृत क्षेत्रों में शहादत प्रेमी कार्रवाई करने का निराधार आरोप मढ़ा गया है। इराक में संयुक्त अरब इमारात की गैस कंपनी के प्रतिष्ठान पर हमला हुआ है। स्थानीय चैनल के अनुसार इराक के उत्तर में संयुक्त अरब इमारात की गैस कंपनी दाना गैस के प्रतिष्ठान पर रॉकेट दागा गया। यूएई की इस गैस कंपनी के प्रतिष्ठान पर कैट्यूशा रॉकेटों से हमला हुआ, जिसके बाद वहां धुएं के घने बादल छा गए। हमले के बाद संयुक्त अरब इमारात की कंपनी के आवासीय क्षेत्रों से खतरे के सायरन बजने की आवाजें भी सुनाई दीं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में सियासी घमासान जारी है। इस राजनीतिक घमासान के 5वें दिन शिवसेना के कार्यकर्ता हिंसा पर उतर आए। शिवसैनिकों ने पहले पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ की। इसके बाद शिंदे के बेटे व कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर पर पत्थरबाजी की गई। अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आर पार के मूड में दिख रहे हैं। मुंबई में शिवसेना की मीटिंग के बाद संजय राउत ने कहा है कि बाला साहब नहीं, अब वे अपने बाप के नाम पर वोट मांगे। वहीं शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि असली शिवसेना अब उन्हीं लोगों के पास है। केसरकर ने आगे कहा है कि हम लोग अभी गुवाहाटी में ही रहेंगे, अगर हम महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां दंगा हो सकता है। शिवसेना के शिंदे गुट ने कहा है कि हमने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है, हमारे पास 2/3 बहुमत है और जिसके पास बहुमत होता है उसके पास ही नेता चुनने का अधिकार भी प्राप्त होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि तनाव की राजनीति भारत के हित में नहीं है। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार अशोक गहलोत का कहना है कि वर्तमान समय में देश में हिंसा और तनाव का माहौल है। गहलोत के अनुसार तनाव की राजनीति न तो प्रदेश के हित में है और न ही देश के हित में। गहलोत ने शनिवार को बालिका महाविद्यालय के लोकार्पण समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि देश में तनाव की स्थिति से किसी को भी फायदा होने वाला नहीं है। गहलोत के अनुसार जिस प्रकार परिवार में तनाव होता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता और तबाह हो जाता है। उन्होंने कहा कि यही बात गांव, शहर, प्रदेश और देश पर भी लागू होती है। उनका कहना था कि इस समय भारत में तनाव, अविश्वास और हिंसा का माहौल दिखाई दे रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात से कुछ लोग खुश हो सकते हैं कि बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मत भूलिए कि यही बुलडोजर कभी आपके यहाँ भी आ सकते हैं। गहलोत के अनुसार बिना कानून और प्रमाण के आप किसी को भी अपराधी नहीं ठहरा सकते। इसी के साथ विश्व समाचार समाप्त हुए।
श्रोताओं, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पश्चिम एशिया यात्रा की। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम तुर्की और इसराइल के संबंधों पर भी एक नज़र डालेंगे। भारत नियंत्रित कश्मीर में राजनीतिक दलों ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों पर आपत्ति जताई है। ये विषय भी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो राजनीतिक चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्षेत्र की यात्रा पर आने वाले हैं। इस यात्रा के क्या उद्देश्य हैं और वो इस यात्रा से क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं पाकिस्तान के वरिष्ठ टीकाकार सफदर रजा।
मैं ये समझता हूँ कि एक फिक्रा जो इंतजाम में मेरे ध्यान में आ रहा है वो ये है कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। जो बाइडेन साहब टेक्नोलॉजी के लिहाज से इनका एयर डिफेंस सिस्टम एरोड्रोम जिसको कहते थे, वो कहते थे कि यहाँ एक पत्थर ही नहीं आ सकता चाहे जो फिलिस्तीनियों के मेजाइल हो, वो नाकाम हुआ है और वहां की हुकूमत जो है वो अपने गोद से गिर गई है और पहली दफा इतनी शदीद एंटी फलस्तीन हुकूमत आई और काबिज बस्तियों के ऑर्थोडॉक्स यहूदी हुकूमत में थे और वो फलस्तीनियों पर जुल्म करने के लिए मारूफ हैं और वो इसराइल जो कि पूरे लबनान पर कब्जा कर लेता था और वो इसराइल जो इराक का एटमी रिएक्टर तबाह करने की सलाहियत रखता था, वो फलस्तीन जो के सहराए सीना में जो मर्जी आते की कार्रवाइयां करता था, अब वो गजा, अरिया और हत्ता के उन इलाकों में भी जहां पर उनके दोस्त अलफत्ता की हुकूमत है उन इलाकों में भी रेजिस्टेंस को बिलखसूस जमीन का नाम ले रहे हैं, वहां पर रेजिस्टेंस को और इस्तेकामत की तहरीक को नहीं रोक सकता। तो इसराइल को दरअसल अंदर से गेहूं खा गई है। अब पूरी दुनिया की दौलत की भी, जैसे कि अमेरिका इसराइल पर निछावर करता है, पूरी दुनिया की दौलत भी इसराइल पर निछावर करे तो इसराइल एक फेल, नाकाम और इस इलाके में तबाहकुन हुकूमत के तौर पर मारूफ हो गई है और इसराइल कुछ वक्त नहीं चाहता कि अपने वजन से गिर जाएगी। और वो जो इन्होंने एक आउटपोस्ट बनाई थी, एक कॉलोनियल निजाम अरबों के तेल पर कब्जा करने के लिए किया था, वो इनको ले डूबेगा और वो तबाह हो गई है। तो जनाब जो बाइडेन अगर आना चाहते थे और दूसरी दफा उनका दौरा इल्तवा में जाता हुआ दिखाई देता है तो उसका मकसद फकत इसराइल का अमेरिका का जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसकी एक्सटेंशन थी, क्योंकि अब जंगी लिहाज से और अखलाकी लिहाज से अगर सहयोगी हुकूमत नाकाम हुई है तो सफारती लिहाज से अरबों ने उसको सहारा दिया हुआ है, और बहरैन और कतर और मराकश और मिस्र के पास, यूएई के पास अब बारी थी कि सऊदी अरब भी उनसे ताल्लुकात बहाल करे। कितने अफसोस की बात है कि मिस्र अपने दो जजीरे, सऊदी अरब अपने भाई को देना चाहता है, वहां की पार्लियामेंट में और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने यह इजाजत दे दी है, लेकिन जो कैंप डेविड अकॉर्ड के मुताबिक अब इसराइल ये एहसान जिता रहा है कि मैं मिस्र को इजाजत दे रहा हूं कि ये दो जजीरे जो सॉवरिन कंट्री मिस्र है वो सऊदी अरब को देना चाहता है।
तुर्की जहां एक तरफ इस्लामी जगत की अगुवाई की कोशिश करता है और इसराइल को अलग अलग प्लेटफार्मों से बुरा भला कहता है, वहीं दूसरी ओर इसराइल से संबंध बढ़ाने के भी प्रयास में है। जायजा पेश कर रहे हैं सैयद मीसम।
इसराइल ने ऐलान किया है कि वो यूरोप को गैस निर्यात करने के संबंध में तुर्की को किसी तरह की विशेषता प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ज़ायन शासन के साथ एक तरफा तौर पर संबंधों के विस्तार के लिए प्रयासरत हैं। इस संबंध में तुर्क विदेश मंत्री मौलूद चाउश ओगलू ने अपने इसराइली समकक्ष के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, अंकारा ने दूतावास के स्तर तक राजनयिक प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाने के लिए गतिविधियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने आगे कहा, तुर्की इसराइल के खिलाफ अपनी भूमि को इस्तेमाल नहीं होने देगा और वो इसराइल के साथ सूचना और सुरक्षा के सहयोग में विस्तार के लिए तैयार है। इससे पहले भी तुर्की के विदेश मंत्री ने अंकारा सरकार और तेल अवीव के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार का आह्वान किया था। अंकारा तेल अवीव के साथ संबंधों में विस्तार के लिए ऐसी स्थिति में प्रयास कर रहा है कि जब अर्दोगान सरकार पीड़ित फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने और उनका समर्थन करने का दावा करती रही है, लेकिन उसने देश में हमास के कार्यालय को बंद कर दिया और फिलिस्तीनी सरकार के प्रतिनिधियों को देश से निष्कासित कर दिया है। इससे साफ है कि तुर्की की विदेश नीति सत्ताधारी पार्टी के हितों के इर्द गिर्द घूम रही है। इसी के साथ ये भी स्पष्ट हो गया है कि फिलिस्तीनियों के समर्थन का नारा सिर्फ ढकोसला है। तुर्की की सत्ताधारी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के अधिकारियों के हालिया कदमों से साफ हो गया है कि तुर्क नेता सिर्फ अपने और अपनी पार्टी के हितों का ख्याल रख रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय हितों से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम नेताओं, विशेष रूप से तुर्की के नेताओं की इन बदलती हुई नीतियों के कारण ही ज़ायोनी अधिकारी पीड़ित फिलिस्तीनियों पर बेखौफ होकर जुल्म ढा रहे हैं। इस संबंध में अहद मोहम्मद अली ने बैतुल मुकद्दस में ज़ायोनी अपराधों पर कुछ मुस्लिम सरकारों, विशेष रूप से तुर्की और अजरबैजान सरकारों की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा, हालिया वर्षों में तथाकथित मुस्लिम सरकारों की चुप्पी ने फिलिस्तीनियों पर इसराइल के अत्याचारों में वृद्धि कर दी है। पिछले दो दशकों के दौरान तुर्की और इसराइल के संबंधों में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। इसका मुख्य कारण तुर्क राष्ट्रपति अर्दोगान के स्वभाव और नीतियों में लगातार बदलाव होना है। एक दौर था जब अर्दोगान मुस्लिम जगत का नेता बनने का प्रयास कर रहे थे और हर प्लेटफार्म पर इसराइल को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने चोला बदल लिया है और वो इसराइल के साथ पहले से भी अधिक गहरे संबंधों के लिए हाथ पैर मार रहे हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर में राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर आपत्ति जताई है। कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार जिन नीतियों पर चल रही है वो भारत के संविधान की नीतियां नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की नीतियां हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर विधानसभा के चुनाव कराएं। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके अनुसार सुकून चाहिए। श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर फारूक ने नई दिल्ली की मौजूदा प्रशासन पर ताबड़तोड़ आक्रमण करते हुए कहा कि ये इस देश को अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो पर चलाना चाहते हैं जिसमें ये बताया गया है कि भारत को हिंदू धर्म में तब्दील करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना किसी भी हाल में देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत तमाम धर्मों का देश है और जो इसको इसके कॉन्स्टिट्यूशन से अलग चलाने का प्रयास करेगा वो देश का दोस्त हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मैं नई दिल्ली से ये मुतालबा करता हूँ कि वो समय को जाये किए बगैर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जाएं ताकि लोगों को सुकून मयसर हो। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो प्रशासन काम कर रही है वो सरकार शाही है और उसमें सिर्फ और सिर्फ वो अपने पार्टी हित को देख रहे हैं, लोगों को नहीं। इस बीच जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी श्रीनगर में एक जनसभा के बीच कुपकार अलायंस पर ताबड़तोड़ आक्रमण किए। इस दल के अध्यक्ष सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दफा 370 हो या 35 इसको या भारत का पार्लियामेंट वापस कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि ये गुपकार अलायंस लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये समझती है कि तमाम समस्याओं का समाधान नई दिल्ली के पास मौजूद है और हमें सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली से संपर्क करना होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नरसंहार हुआ है, अब ज़रूरत इस बात की है कि हम नई दिल्ली के साथ एंगेजमेंट में आगे बढ़ें और जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करें और यहाँ पर तमीर तरक्की के साथ साथ जो भी लोगों के हित में है उसके लिए काम करें।
बीट बीट की बोली बोलेंगे और उनका तो इसी में फायदा है, हर जगह ये नहीं है, यहाँ आप देखिए किसी भी स्टेट में जहाँ बीट बीट की बोली बोली जाती है दिल्ली का फायदा है। ये चोइस अलग अलग जबान आसन बोला, अलग अलग मसला आसन बोला,
सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने राजनीतिक चर्चा सुनी और अब पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य।
उज्ज्वल भविष्य।
दोस्तों, कार्यक्रम उज्जवल भविष्य की एक अन्य कड़ी को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और सैयद। में साम का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद पर्यटन उद्योग के विस्तार की चर्चा करेंगे।
पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि हालिया दशकों में ईरान ने जिन वैज्ञानिक क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है उनमें से एक स्टेम सेल की तकनीक है। स्टेम सेल समस्त सेल्स की जड़ है और इसमें शरीर के किसी भी सेल में बदलने की क्षमता होती है। इसके अलावा पिछले 4 दशकों के दौरान ईरान अनुसंधान, तकनीक, स्वास्थ्य, पर्यटन और मेडिकल की पढ़ाई में क्षेत्र का एक केंद्र बन चुका है। ये देश स्वास्थ्य व चिकित्सा के कई क्षेत्रों में उच्च वैश्विक स्तर से भी आगे है। पिछले 4 दशकों के दौरान चिकित्सकों और विशेषज्ञों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
ईरान में फार्मास्यूटिकल उद्योग का इतिहास 80 साल पुराना है, लेकिन इस उद्योग का सही विकास और विस्तार इस्लामी क्रांति के बाद हुआ है।
अब ईरान मध्य पूर्व में सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है, जो घरेलू स्तर पर 97% दवाओं का उत्पादन करता है और बड़ी मात्रा में इन दवाओं का निर्यात भी करता है। यहाँ तक कि कैंसर के उपचार वाली दवाओं के उत्पादन में भी देश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। ईरान ने फार्मेसी के क्षेत्र में आधुनिक मशीनरी और उपकरणों के उत्पादन में भी अच्छी प्रगति की है। इन मशीनों को डिजाइन भी घरेलू स्तर पर किया गया है और उनका निर्माण भी देश के ही कारखानों में हुआ है।
ईरान ने हालिया वर्षों में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य पर्यटकों को आकर्षित किया है, लेकिन ईरान की चिकित्सा क्षमताओं के मद्देनजर इन सेवाओं का उपयोग उसके आकार के अनुपात में नहीं किया जा रहा है। इसके लिए अव्यवस्थित रूप से की जाने वाली गतिविधियों को व्यवस्थित करने और एक व्यापक योजना बनाने की जरूरत है। ईरान की विशेष भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, आदित्य ऐतिहासिक स्मारक और शिया मुसलमानों के 8वें इमाम का पवित्र रोजा ईरान को पर्यटन के लिए एक मुख्य आकर्षण प्रदान करता है।
इस्लामिक क्रांति के बाद जिन क्षेत्रों में ईरान ने उल्लेखनीय प्रगति की है उनमें से एक पर्यटन उद्योग है। पर्यटन उद्योग को किसी भी समाज में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है और देशों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के मामले में ईरान दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से एक है। दुर्भाग्य से इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के विकास और प्रगति के लिए उसकी इस क्षमता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि इसके विपरीत देश की ऐतिहासिक विरासत को लूटा और खसोटा गया। सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के बजाय शाही शासन और दरबारियों ने उसके विनाश, तस्करी और लूटपाट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर यह स्थिति जारी रहती है तो अधिकांश ईरानी धरोहरों को यूरोपीय और अमेरिकी संग्रहालयों में देखना पड़ता। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण और उनकी मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया गया। इस्लामिक क्रांति के बाद 15,581 धरोहरों की मरम्मत की गई, जिसके कारण देश में ऐतिहासिक पर्यटन में अभूतपूर्व और उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पर्यटन के क्षेत्र में 600 से ज्यादा कानून और दिशा निर्देशों से पर्यटन के व्यापक विकास के लिए ईरान की गहरी दिलचस्पी को देखा जा सकता है।
पिछले जमाने में ईरान की ज्यादातर आबादी यात्रा करने से वंचित थी, लेकिन इस्लामी क्रांति के बाद ग्रामीण सड़कों के निर्माण में 500 गुना और इंटरसिटी सड़कों के निर्माण में 32 गुना वृद्धि हुई, जिससे देश में पर्यटन उद्योग को काफी फलने फूलने का मौका मिला। हाईवेज पर 250 से ज्यादा रिजॉर्ट्स का निर्माण किया गया, जहां यात्रियों की जरूरत की हर चीज उपलब्ध होती है, और इससे पर्यटन उद्योग में विस्तार हुआ है। देश भर में 270 जंगली पार्कों की स्थापना की गई है और शहरों में मौजूद पार्कों को सजाया और संवारा गया है। ये पार्क पर्यटनों के आकर्षण का एक मुख्य केंद्र माने जाते हैं।
इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में पर्यटन मार्गों और केंद्रों में 200 गुना की वृद्धि हुई है। क्रांति से पहले पर्यटन के छोटे बड़े आकर्षण जैसे कि ऐतिहासिक घर, मकबरे, रोजे, विद्वानों की कब्रें, मदरसे, मस्जिदें, चर्च, आतिशदान, बाजार, ऐतिहासिक गांव और टीले, दुर्ग, टॉवर, बाथरूम, चिमनियां, पुल, झीलें, द्वीप और पोर्ट, रेगिस्तान, पहाड़ियां, बाग, तालाब, खेल के मैदान, रेलवे स्टेशन, चौराहे और सड़कें आमतौर पर पर्यटन स्थलों में शामिल नहीं होते थे, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद विशेष रूप से निवेश के जरिए इस तरह के 401 स्थलों को पर्यटनों के लिए पेश किया गया।
इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्की स्लोप, कार राइडिंग, पैराग्लाइडर, जुरासिक पार्क और ऐसे इलाकों में कि जहां झीलें या नदियां नहीं थीं, वहां आर्टिफिशियल झीलों और झरनों का निर्माण किया गया। नेशनल बॉटनिकल पार्क, सेंचुरी बर्ड, मिनिएचर गार्डन, म्यूजियम और संग्रहालयों का विदेशी और देशी पर्यटकों के आकर्षण के लिए निर्माण किया गया। क्रांति से पहले पर्यटन संगठन ने केवल विदेशी पर्यटकों को सेवाएं प्रदान की और सिर्फ सीमित आकर्षण केंद्रों को ही इसके लिए तैयार किया। लेकिन ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद पहले संगठन का गठन किया गया और उसके बाद सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और पर्यटन मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय ने न सिर्फ विदेशी पर्यटकों के लिए बल्कि घरेलू पर्यटकों के लिए भी देश भर में अद्वितीय पर्यटन स्थलों और केंद्रों का निर्माण किया।
ट्रैवल एजेंसियां और यात्रा सेवाओं के लिए लाइसेंस की संख्या में 200 गुना से ज्यादा की वृद्धि की गई और इस्लामी क्रांति के बाद उनकी संख्या बढ़कर 4,800 हो गई। इससे पता चलता है कि इस्लामी क्रांति के बाद इस उद्योग के किस तरह से आम लोगों की पहुंच तक संभव बनाया गया। इस्लामी क्रांति की अनुकंपा से देश के इतिहास में पहली बार ट्रैवल एजेंसियों के संचालन के लिए एक कोर्स की शुरुआत की गई, जिसके तहत यात्रा सेवा और तकनीकी प्रबंधन कोर्स में 30,000 लोगों का प्रशिक्षण किया गया। देश में पंजीकृत होटलों की संख्या में 400% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 1978 में 291 से बढ़कर 1200 हो गई, जिसमें सरकारी संस्थाओं के कई गेस्ट हाउस को नहीं गिना गया है। यह सभी सुविधाएं पर्यटन के बुनियादी ढांचे में एक उल्लेखनीय परिवर्तन माना जाता है। अन्य आवास केंद्रों को छोड़कर होटलों और गेस्ट हाउस में बेड की संख्या 2018 में 4,00,000 से अधिक हो गई।
क्रांति से पहले देश में एकमात्र पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण केंद्र ईरान पर्यटन और होटल सेवा केंद्र था। क्रांति के बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ और अब पर्यटन विश्वविद्यालय के अलावा विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा केंद्रों में 100 से ज्यादा फैकल्टी इस विषय में प्रशिक्षण दे रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। इस्लामी क्रांति से पहले पर्यटन से संबंधित कोई पत्रिका प्रकाशित नहीं होती थी, लेकिन अब 22 पत्रिकाओं के अलावा 310 साइटें और साइबर स्पेस में सैकड़ों चैनल मौजूद हैं। देश में सभी 300 संकाय सदस्य और सैकड़ों पर्यटन प्रशिक्षक इस्लामी क्रांति के बाद विशेष तौर पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। पर्यटन के विषय में ग्रेजुएट, मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री में 20,000 छात्र पढ़ रहे हैं, जबकि हर साल पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में रोजगार पाते हैं।
पर्यटन के क्षेत्र में 1,00,000 लोग काम कर रहे हैं। इनमें विश्वविद्यालय, ट्रैवल एजेंसियां, होटल और टूर गाइड शामिल हैं। हालांकि इस्लामी क्रांति से पहले इस फील्ड में कितने लोग काम करते थे, इसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं। ईरान में टूर गाइडों की संख्या में 275% की वृद्धि हुई है। क्रांति से पहले लाइसेंस प्राप्त टूर गाइडों की संख्या सिर्फ 40 थी, जो अब बढ़कर 7,000 हो गई है। होटल मैनेजमेंट में पेशेवर लोगों की संख्या 7 गुना बढ़कर 5,300 हो गई है। इस्लामी क्रांति के बाद 7,000 लोगों ने ईरान और वर्ल्ड टूर से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि क्रांति से पहले इस क्षेत्र में कोई विशेष कोर्स नहीं था। ईरान की सैर करने वाले अक्सर पर्यटक यहां इस क्षेत्र में शानदार प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और जब वे देखते हैं कि मीडिया में किए जाने वाले दुष्प्रचार के विपरीत यहां आधुनिक और बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त है, तो वे दंग रह जाते हैं और वापस लौटकर लोगों से वास्तविकता बयान करते हैं।
दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अब हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुना,
उज्जवल भविष्य। आपको बताते चलें कि हमारे इन कार्यक्रमों को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार parstoday.com/hi। और अब अंत में पेश है एक अन्य साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, ईरान भ्रमण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, ईरान में कई प्रांत हैं जिनमें से बहुत से प्रांतों के बारे में हम इस कार्यक्रम में बात कर चुके हैं। यहाँ का एक प्रांत है अलबोर्ज, जो राजधानी तेहरान के निकट स्थित है। इस प्रांत की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। अलबोर्ज प्रांत का कुल क्षेत्रफल 5,833 वर्ग किलोमीटर है। ये प्रांत राजधानी तेहरान के पश्चिम में और अलबोर्ज पर्वतीय श्रृंखला के दक्षिणी आंचल में स्थित है। सन 2010 में ईरान की संसद ने इस प्रांत के गठन के बिल को मंजूरी दे दी थी। इस बिल की मंजूरी के बाद करज शहर को अलबोर्ज प्रांत का केंद्रीय नगर घोषित किया गया था।
अलबोर्ज प्रांत का नाम अलबोर्ज पर्वतीय श्रृंखला से लिया गया है। इस प्रांत का केंद्रीय शहर करज राजधानी तेहरान के उत्तर पश्चिम में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अलबोर्ज प्रांत में 6 शहर हैं। अलबोर्ज प्रांत के कुछ नगरों के नाम इस प्रकार हैं: तालेगान, इश्तहार्द, सावजबुलाग, नजराबाद और फरदेस आदि।
अलबोर्ज प्रांत उत्तर में माजंदरान से, दक्षिण में उस्ताने मरकजी से, पश्चिम में कजवीन से और पूरब में तेहरान प्रांतों से मिलता है। समुद्र की सतह से 1,320 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अलबोर्ज पहाड़ द्वारा माजंदरान प्रांत से ये प्रांत अलग होता है। अलबोर्ज पर्वतीय श्रृंखला के केंद्रीय इलाके और चालूस दर्रे एवं करज नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस प्रांत में शीत ऋतु में कड़ाके की ठंड पड़ती है। आम दिनों में यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। गर्मी के मौसम में यहाँ का वातावरण अधिक गर्म नहीं हो पाता।
भौगोलिक रूप से इस प्रांत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार अलबोर्ज प्रांत की जलवायु उत्तरी इलाके में संतुलित और थोड़ी ठंडी और दक्षिणी इलाके में संतुलित है। इस इलाके के महत्वपूर्ण पहाड़ों में आसारा, सिंकू, हफ्तखान और किरचान का नाम लिया जा सकता है। इस प्रांत में बहने वाली नदियों में ओबेलानिस, बुरगान, सीदक, ओब वर्जन, मोरूथ, करज, वारंगे, विलायत और अब शहरिस्तानक का नाम लिया जा सकता है।
अलबोर्ज प्रांत कृषि उत्पादों की दृष्टि से ईरान के महत्वपूर्ण प्रांतों में से एक है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल भी यहाँ पर उपलब्ध है। इस प्रांत में गंदे पानी को फिल्टर करके कृषि के लिए उपयोग करने की सुविधा भी मौजूद है।
अलबोर्ज प्रांत में रोजगार के भी काफी अवसर हैं। यहाँ खाद्य पदार्थ का उद्योग है, पौधों के लिए ग्रीन हाउसेस के उद्योग में निवेश करने के काफी अवसर हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट होने के कारण निर्यात के अवसर भी उपलब्ध हैं। अलबोर्ज के दूसरे उद्योगों में पावर लूम और कृषि उद्योगों का नाम लिया जा सकता है। चूना, कोयला, तांबा, नमक, सिलिका और बालू जैसी खनों के कारण इस प्रांत का ईरान में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बावजूद इस प्रांत में अधिकांश रोजगार सेवाएं उद्योग और कृषि उद्योग में उपलब्ध है।
करज प्रांत का केंद्रीय नगर करज अलबोर्ज पर्वत के दक्षिणी आंचल और दश्ते कवीर के पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ है। जलवायु की दृष्टि से करज शहर केंद्रीय पठार के गर्म एवं शुष्क इलाके में स्थित है। यहाँ की जलवायु की विशेषता ये है कि हवा में थोड़ी नमी के कारण मौसम तेजी से यहाँ पर बदलता रहता है। जलवायु की दृष्टि से ऊंचे इलाकों को पर्वतीय केंद्रीय जंगलों और दक्षिणी मैदानी इलाकों में बांटा जा सकता है।
पर्वतीय इलाके में हिसार के पहाड़, बिलगान, बीजे, सिया कलान, अतिशका और वर्जान शामिल हैं। ये पहाड़ समुद्र की सतह से 1140 से 2230 मीटर तक ऊंचे हैं, जिन पर सामान्य रूप से बर्फ गिरती है। मैदानी एवं आंचलीय इलाकों की ऊंचाई समुद्र तट के लगभग 1200 से 1400 मीटर है। करज शहर इसी इलाके में स्थित है।
करज नदी अलबोर्ज पहाड़ के दक्षिणी भाग से निकलती है, जो तेहरान से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस नदी की लंबाई 220 किलोमीटर बताई जाती है। इस नदी के ऊपर एक बड़ा बांध अमीर कबीर बना हुआ है। इस बांध से तेहरान के लिए पीने के पानी की आपूर्ति के अतिरिक्त 75,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी की जाती है। बांध और करज नदी के आसपास के इलाके सुंदर पर्यटन स्थल हैं। इस इलाके में गेहूं, जौ, हरी सब्जियां, कपास और चुकंदर आदि की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का भी उत्पादन होता है। करज शहर का ईरान के महत्वपूर्ण इलाकों के मार्ग में स्थित होने के कारण विशेष महत्व प्राप्त है।
तेहरान से कज़वीन और पश्चिम से पूरब की ओर जाने के लिए करज से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे शहर का महत्व और बढ़ जाता है। प्रांत के केंद्र होने की दृष्टि से करज शहर व्यापारिक एवं आवाजाही का केंद्र है। इस शहर के माध्यम से ही कृषि और अन्य उत्पादों को देश के दूसरे इलाकों तक पहुँचाया जाता है। व्यापार एवं उद्योग और तेहरान के पड़ोस में स्थित होने के कारण करज शहर की जनसंख्या काफ़ी अधिक है।
वर्तमान समय में करज नगर का अधिक पुराना इतिहास उपलब्ध नहीं है। ये प्रांत तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों, उत्तर में कैस्पियन सागर, पश्चिम में कज़वीन और पूर्व में रेई के कारण विभिन्न घटनाक्रमों एवं परिवर्तनों का साक्षी रहा है। निसंदेह इन घटनाक्रमों का प्रभाव करज के निवासियों पर पड़ा है।
अलबोर्स पर्वतीय श्रृंखला के आंचल, यहाँ की उच्च जलवायु और नदियों के कारण हमेशा से विभिन्न कबीलों का निवास स्थान रहे हैं। दस्तावेजों के आधार पर इस्लाम से पूर्व भी ये इलाका आबाद था। अलबोर्स पर्वत श्रृंखला में स्थित अलबोर्स प्रांत में नजराबाद नाम का एक क्षेत्र भी है। उपयुक्त जलवायु के कारण यहाँ पर शताब्दियों से जीवन व्यतीत किया जा रहा है। कहा जाता है कि ईसा पूर्व कई शताब्दियों से लोग यहाँ पर जीवन व्यतीत करते आए हैं।
इस क्षेत्र में ईसा पूर्व के बहुत से टीले मौजूद हैं। इस स्थान से मिलने वाली चीजों से ये पता चलता है कि ये क्षेत्र शताब्दियों पूर्व मानव सभ्यता का केंद्र रह चुका है। करज शहर के आसपास पुराने कई टीले स्थित हैं, जैसे आकतप्पे और मर्दाबाद, शाहदिस, कलाए दुख्तर और कलाए कलाक जैसे किलों के खंडहर और तख्ते रुस्तम एवं तख्ते कैकाउस जैसे प्राचीन धरोहर मौजूद हैं। 8वीं हिजरी कमरी में हमदुल्ला मुस्तौफी ने कन और करज को तालिकान राज्य के अधीन बताया था।
ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक शहररई पर मुगलों के हमले से पूर्व काफिलों की आवाजाही सगजाबाद और शहरयार के पास से होती थी, लेकिन मुगलों के शासनकाल में गजविन करज के मार्ग को वरीयता प्रदान की गई। करज हाईवे के किनारे ऐतिहासिक इमारतें इसी बात की साक्षी हैं। कहा जाता है कि हलाकु खान ने इस इलाके से गुजरते समय इस्माइलियों के मजबूत गढ़ अलमुत को नष्ट कर दिया था।
करज शहर में स्थित पुले सफ़वीये के इतिहास के अध्ययन से इस विचार को बल मिलता है कि सफ़वी शासन के दौरान बनने वाला ये पुल इस शासन काल से पूर्व बने पुराने पुल के खंडहर पर ही बनाया गया था। सफ़वी शासन काल में बनने वाली दूसरी इमारतों में से इमाम जादे हसन करज के मकबरे का नाम लिया जा सकता है। सन 1831 में आका मोहम्मद खान काजार ने तेहरान को अपनी राजधानी घोषित किया था। उसके बाद से करज तेहरान के पड़ोस में होने के कारण तेजी से विकसित होता चला गया और उसका महत्व बढ़ता ही गया।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारा आज का प्रयास आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। ईमेल के माध्यम से भी आप हमें अपने ख्यालात भेज सकते हैं। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़।